जी अब फरमाइए, बिस्मिल्लाह करें जी।
हाँ जी जी सर, मैं सवाल मैसेज अंडरलाइन कुरान के चैप्टर 12 से स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट से, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक्य है। तो उसमें से उस पैसेज में लिखा था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेड हिज सन ऑन हिज फोरहेड इंस्टेड ऑफ हिज बैक, दिस प्रूव्स दैट ही नेवर इंटेंडेड टू स्ले हिज सन, मतलब उनका कोई इंटेंशन नहीं था। तो फिर उस पूरे वाक्य को समझने के लिए सर मेरे दो सवाल हैं इस वाक्य को नजर में रखते हुए, कि फिर अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा कि यू फुलफिल योर विजन, इंडीड इट इज अ ग्रेट स्लेइंग इफ यू नेवर इंटेंडेड टू डू सो। और दूसरी चीज के हद भार को कैसे अलग कर दिया, ये कैसी स्केल है?
इसमें एक जुमला तवज्जो तलब है कि आग ने जलाया नहीं, यानी आग तीन चीजों का मुरक्कब है, रंग, रोशनी और हरारत, हाँ या नहीं?
जी सर बिल्कुल।
अब उन्होंने कमाल ये किया, कुल ना, हमने कहा, या नारो ए आग, कुलना या नारो कूनी बर्दा, यानी कि ठंडी हो जा। क्या मतलब? आग की दो सलाहियतें, यानी रंग और उसकी रोशनी को बरकरार रहने दिया। देखें, अगर लफ्ज कहते खामेदून तो बुझ जा, आग बुझ जाती। और करें, क्या लफ्ज बोला? ये नहीं कहा कि बुझ जा, क्या कहा? ठंडी हो जा। यानी क्या किया कि ये जो आग की तीन प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक को उन्होंने स्टॉप कर दिया।
जी।
क्लियर हो गई बात? इसी तरह आप छुरी को देखें, छुरी ने काटा नहीं, लेकिन कोई चीज कटी। छुरी ने, अब छुरी क्या है? छुरी धातु का एक टुकड़ा है, जिसके ऊपर अगर धार लगी हो तो वो काटेगी। अगर धार नहीं लगी तो क्या वो काटेगी? अब उन्होंने हालत मनाम में जाकर देखा, मतलब है वो एक नींद का आला दर्जा है, यानी कि हवास की रफ्तार जब बढ़ गई तो उन्होंने गौर किया, उन्होंने इस बात पे तफक्कुर किया कि छुरी कैसे काटती है। तो उन्होंने इस नतीजे को अखज किया कि छुरी नहीं काटती, छुरी की धार काटती है। गौर करें, यानी जहन कैसी बारीकी में उतरा। अब उन्होंने इसका तजर्बा किया, अब करने वाला कौन है? जो परिंदों को जिंदा कर चुका है, परिंदों को स्ले किया, परिंदों को जिबा किया, परिंदों का गोश्त मिक्सअप किया, मुख्तलिफ पहाड़ों पे जाके गिरा दिया, उसके बाद आवाज दी तो परिंदे आ गए। यानी अगर वो बच्चे को जिबा सचमुच भी कर देते तो आवाज दे के दोबारा उठा लेते, क्योंकि उन्होंने ये हुनर तो सीख रखा था, अल्लाह ने उनको अलहदा से सिखाया। अब इस चैप्टर में जो टेक्निकल बात थी कि अंबियाए कराम के वाकयात पे गौर कैसे किया जाता है, पहले आधा चैप्टर जो है वो इस बात को वाजे करने में बताया कि किस तरह से सारे कंपोनेंट्स को एक जगह करके आप गौर करेंगे। उसमें कुरान से तमाम मवाके लेकर उन पे गौर करके जो जो कंक्लूजन आता गया वो जमा करते गए, तो एक व्यू बना कि एक्चुअली अल्लाह रब्बे करीम ने उनको ये सलाहियत अता कर दी थी। क्या? कि वो चीजों की सिफात को जारी कर सकते थे या रोक सकते थे। सिफात है ना, ये काटना क्या है एक सिफत है, जलाना क्या है एक सिफत है। तो जब उन्हें आग में फेंका गया तो चूंकि वो कुल ना हमने कहा, जमा का सीगा है, यानी कौन कह रहा है, अल्लाह अकेला नहीं कह रहा, अल्लाह जमा का सीगा इस्तेमाल फरमा रहा है ना, यानी पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम अल्लाह की जात और सिफात से बना हुआ सिस्टम। और साथ में जाहिर है कि हजरत इब्राहिम की भी ख्वाहिश है कि या अल्लाह मैं तो तेरा लेके के पैगाम निकला हूं, ये मुझे आग में फेंक रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा क्या करना चाहिए आग को कहा कि ठंडी हो जा, ये नहीं कहा बुझ जा, अगर अल्लाह कह देते बुझ जा तो वो शोले भी खत्म हो जाते। तो बात समझ में आ गई आपको कि असल में उन्होंने
प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर,
दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड, कि प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना सीख लिया था। और जब उन्होंने एक्सरसाइज किया इसको एट इज ओन और करके दिखाया तो अल्लाह ने कहा अरे वाह तूने तो अपना ख्वाब सच कर दिखाया। गौर करें, अगर ये हुक्म था तो अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई तू शाबाश तुमने मेरा हुक्म माना तो लेकिन बेटा तो ज़िबा ही नहीं हुआ देखे ना, बेटा तो ज़िबा नहीं हुआ, उसकी जगह दुम्बा कटा। क्या मतलब कि छुरी उन्होंने यहां चलाई और उस छुरी की धार ने उसको काटा, किसी और चीज को, तो उन्होंने क्या किया कि छुरी की धार को छुरी से अलहदा करके इस्तेमाल करके दिखा दिया। अब क्लियर हो गई बात?
बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बिल्कुल। सर तभी लव एक्सपेरिमेंट का भी आपने वहां इस्तेमाल किया ना कि ये एक्सपेरिमेंट था उनका।
हाँ मतलब है, देखें एक चीज को हम, अब मैंने और आपने इसे इल्मी तौर पे समझा, हमने
जी
इसका एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया
जी, सही बिल्कुल।
अभी एक्सपेरिमेंट के दर्जे पे जाने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना है, वो चीजें जो है वो रूहानी सलाहियत कहलाएंगी। देखे ना, हम पहले एक चीज से इल्मी तौर पे आगाह हो रहे हैं, वी आर बिकमिंग वर्स, नॉट वर्स्ट वर्स्ड, ठीक है, एक चीज से वाकिफ हो रहे हैं, आगाह हो रहे हैं, आशना हो रहे हैं। हमने कभी इस जहत में सोचा ही नहीं कि चीजों की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में से किसी एक को, मतलब एक चीज की तीन प्रॉपर्टीज है उसमें से एक को चला दिया, दो को रोक दिया, या एक दो को चला दिया एक को रोक दिया। और करें तो ये सलाहियतें अल्लाह ने अता की हुई है इंसान को, और उनका तज़करा कुरान हकीम में करके जताया है कि इतनी गहराई में सोचना है। उसके लिए शर्त क्या है कि आपको हालत मनाम में जाना है पहली शर्त, उससे पहले वो परिंदों के साथ मानूस करके तो उनको आवाज दे के तो इतना, अब एक एक लफ्ज जो है वो कीमती है, हर लफ्ज के पीछे एक कहानी है, कितना जोर चाहिए। अभी तो हम एक स्टोरी पढ़ी हमने, जब इस को एक्सपेरिमेंट के दर्जे पे करेंगे यानी अमली तौर पे बरतेंगे तो तजर्बा होगा। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा ये तजर्बे के भी दो मतलब है ना। वाजे होगी बात
आगे
तो। अल्लाह खुश रखे जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने इतनी तवज्जो से पढ़ा, मोस्ट वेलकम। जी जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर एक मुझे चीज में समझ आया कि जो है ना हजरत सुलेमान की किस्से में आकर बचिया
जी जी
तो उनको जो इल्म हासिल था
जी जी
एक लफ्ज आ रहा है कि वो मकान के तमाम फासले मिटा कर लिए
जी जी
तो मतलब इसको किस तरह सर मुझे
मैं आपको एक मादी मिसाल से समझा देता हूँ जरा सा गौर करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। फर्ज करें कि आप एक कमरे में हैं, वहां एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उस प्रोजेक्टर से एक तख्त की तस्वीर ठीक है उसकी शुमाली दीवार पे डिस्प्ले हो रही है। क्या लफ्ज अर्ज किया मैंने? प्रोजेक्टर से तख्त की
दीवार पे डिस्प्ले हो रही है।
ठीक है, मैंने कहा कि नॉर्थ वाली दीवार पे डिस्प्ले हो रही है। अब फिजिकल तरीका क्या है कि आप वो स्क्रीन को पूरी स्क्रीन को हिलाएं और उसे मगरिब की तरफ लाएं। ठीक है, ये हमारा मादी सिस्टम। लेकिन अब अगर फर्ज करें आप प्रोजेक्टर के पीछे खड़े हैं तो आपने क्या करना है? हैं? जरा सा प्रोजेक्टर का रुख दाएं से हल्का सा मोड़ेंगे, हाँ या नहीं? क्या होगा? वो तस्वीर जो शुमाल की दीवार पे दिखा रही है अपना जलवा फ्रोज है, वो मगरबी दीवार पे आना शुरू हो जाएगी। मतलब कि आपका कमांड कंट्रोल किस पे है? प्रोजेक्टर पे। अब आसफ बिन बरखिया क्या कहता है? मेरे पास इल्मुल किताब है, यही कहा ना उन्होंने, अकॉर्डिंग टू दी कुरान रिपोर्टिंग। कुरान रिपोर्ट कर रहा है कि आसफ बिन बरखिया ने कहा मेरे पास किताब का इल्म है। किताब का मतलब है सांचे। मैंने यहां उन सांचों को तशबी दी है प्रोजेक्टर से। अब वो किताब का इल्म रखने वाला बंदा प्रोजेक्टर को जानता है, उसके डिस्प्ले के मैकेनिज्म को जानता है, उसको पता है कि लीवर कहाँ है और लीवर पकड़ के उसने हिलाया जरा सा उसको मूव किया और वहां से जो डिस्प्ले था क्या कहा? तुरफातुलैन। क्या लफ्ज बोला? तेरी आंख का जाविया बदले, आंख का जाविया बदले। हमने तर्जमा किया था पलक झपकना। पलक झपकने में आंख बंद होती है और खुलती है, और तुरफा तो लैन का मतलब है कि आंख ने तरफ बदली। और करें कि तुरफा तो लैन में यानी उस बंदे की अपनी निगाह जमी हुई है कहां? प्रोजेक्टर पे। और उसने अपनी आंख के इशारे से प्रोजेक्टर को हिला दिया। क्या कहा? अब हमने कहा कि वो जी आंख झपकने के अरसे में आ गया, तो कैसे आ गया? इस तरह से जब वो बंदा अपने इनर में उतर कर उस सतह तक पहुंच गया जहां से प्रोजेक्टर पे कंट्रोल हासिल था उसको, इस कंट्रोल का नाम है इल्मुल किताब। जी वालेकुम। देखे ना, हम बाहर सोचते हैं ना, हमारी अप्रोच क्या है कि हम इनर की तरफ मतवज्जो ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि सारा खेल हमारे इनर में। उस बंदे के मुंह से अल्लाह कहलवा रहा है, और हमें रिपोर्ट कर रहा है कि उस बंदे ने अपने इनर में जाके उस प्रोजेक्टर को जहां से चीजें डिस्प्ले हो रही हैं, जिसको सांचा कहा, इल्मुल किताब कहा, अब हमने तर्जमा कर दिया कि वो कुरान है, तो उस वक्त तो कुरान नाजिल ही नहीं हुआ था
जी। लेकिन आपका इनर का जो वो था सिस्टम,
वो तो अजल से कायम है, वो तो अजल से कायम है,
उस किताब में, उस
इनर के जोर से जी। तो ये बात वाजे हो गई
सर। एक और सवाल
जी। जी इरशाद
सर, आपने अपनी आपकी किताब में मेरा पढ़ा कि सूरह आराफ की एक आयत है, और तू देखता है कि वो तेरी तरफ तक रहे हैं अगर से वो कुछ नहीं देख रहे, इसमें सर रात नजर और बसर सर तीनों हालतों की जरा सी वजाहत मुझे की दरकार है। सर कंफ्यूजन था और वो कौन देख रहे हैं और क्या है।
वह तराहुम तू देखता है, तराहुम तू देखता है कि उनसे रलायका कि वो तेरी तरफ तक रहे हैं, तेरी तरफ नजरें जमाए बैठे हैं। वलहुम ला युबसिरून, लेकिन वो कुछ नहीं दिख रहा उनको। अब देखें यहाँ पे तराहुम तू देख रहा है उनको कि वो तेरी तरफ नजरें जमाए बैठे हैं, हालांकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही। यानी बसारत का ताल्लुक बसीरत के साथ है। आप जो देख रहे हैं अगर वो समझ आ रहा है तो ये बसारत हुई, अदरवाइज वो या नजर है या वो राह की हालत है।
तो सर ये कौन देख रहे हैं तेरी तरफ, कौन?
बात हो रही है हुजूर अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है, ठीक है कि तू देख रहा है। अब मैं कहूं ये जुमला अगर मैं अपने ऊपर या जब आप मुतालिया फरमा रहे हैं तो आप इसे खुद पे लागू कर लें, तो आप देखते हैं कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उनकी नजरें आपकी तरफ हैं, लेकिन क्या उन्हें कुछ दिख रहा है? वो तो आपका जाहरी लिबास देख रहे हैं, उनको क्या पता कि आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। क्यों जी। देखे ना, हम इसे जब खुद पे लागू करेंगे तो अल्लाह रब्बे करीम मुझसे भी तो मुखातिब है ना, आपसे भी मुखातिब है। हजूर अलैहिस्सलाम के जरिए हमें क्या आगाही दी गई कि तुम देखते हो कि लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं देख रहे,
कुछ नहीं देख रहे।
तो अब देखें उनको बसारत हासिल नहीं है, नजर तो है उनके पास, अब वो नजर से राह के दर्जे पे भी नहीं देख रहे। तो असल चीज नजर हुई, नजर से आपने एक काम लिया राह के दर्जे पे, दूसरा काम जब उसके साथ गौर व फिक्र शामिल हो गया तो वो बसारत बन गई। ये तीनों दर्जे वाजे हो गए। माय प्लेजर जी। जी
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम
सर, आप प्लीज ये वर्ड फला को थोड़ा सा डिफाइन कर दें।
किसको?
वर्ड फला।
कद अफलहा मन तज़क्का। फलाह जो है ये लुगवी माना, फलाह का मतलब है खेत में हल चलाना, जमीन में हल चलाना फलाह कहलाता है। अब बताइए हल चलाना मुशक्कत मांगता है या नहीं, हुनर मांगता है या नहीं? हमने तर्जमा कर दिया कामयाबी, लफ्ज कामयाबी का तर्जमा करें तो काम मिलना कामयाबी कहला रहा है, काम याब काम मिला, हमने तर्जमा कर दिया सक्सेस। नतीजा असल मफहूम से हम दूर हट गए। अल्लाह कहता है कद अफलहा, फला मिलेगी उसको, यानी काम से लग गया वो, कब? सिर्फ वो अफलाहा, काम से लगा। किस काम से लगा? अल्लाह के सिस्टम में काम से लग गया। मन तज़क्का, जिसने खुद को डेवलप किया, जिसने खुद की सफाई की, जिसने खुद को ग्रो किया। देखिए ना, आप किसी बच्चे से तो आप नहीं हल चलवा सकते। जाहिर है कि बच्चे को आप हल चलाने के काबिल बनाएंगे, उसकी तरबियत करेंगे। अब आप गौर करें ना कि हल चलाने में कितना हुनर चाहिए। वो किसान जो है वो जमीन में बैलों की जोड़ी को जब हल में जोत लेता है तो वो सीधी लकीर लगाता है। कभी आपने गौर किया कि कितना बड़ा हुनर है कि वो हत्थी पे हाथ रख के हल की उसको सीधा रखता है। नतीजा वो मीलों मील या कम अज कम गजों के हिसाब से वो खेत को सीधा एक लकीर लगाता है, फिर उधर से मोड़ता है उसको दूसरी लकीर। दोनों ऐसी पैरेलल होती हैं कि देख के बंदा हैरत में चला जाता है कि ये कौन सा हुनर है। तो फलाह का मतलब आप समझ आ गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि अल्लाह के सिस्टम में हमने काम करना है। अल्लाह ने हमें क्या बनाया? अपना नायब बनाया। अल्लाह चाहता है कि हम उसके बिहाफ पे उसकी अता करदा सलाहियतों को इस तरह इस्तेमाल करें कि लोगों के काम आए। पहले तो आप अपने काम आए ना, पहले तो खुद को डेवलप करें। हम सारे पड़े हुए दूसरों के काम आना है। ओ भाई जरा सब्र करो, पहले खुद को किसी काबिल बना लो। अब देखे ना, एक बंदा दलदल में डूब रहा है, आप उसे हाथ बढ़ा के पकड़ के खींचे, वो आपको खींचे तो आप भी गिर जाएं, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? पहले आप खुद को तवाना करेंगे, वहां पे कोई रस्सी बांधेंगे किसी दरख्त के साथ, फिर उस रस्सी को पकड़ के उसको हाथ देंगे या उसकी तरफ रस्सी पकड़ के उसे बाहर से खींचेंगे। हाँ या नहीं? ये तो नहीं है कि आप उसके साथ ही डूब जाएं खुद भी। तो पहले खुद को डेवलप करना जरूरी है। ठीक हो गया?
थैंक यू सो मच सर।
मोस्ट वेलकम जी।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम
सर। आप खैरियत से?
अल्लाह का इनाम, करम परवरदिगार का।
सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब मसाले चार तरफ से घिर ले इंसान और उसको भाई बात समझ में आए कि वो उनसे कैसे ऐसे निकले, लेकिन उसे अल्लाह से पूरी तरह से और देर की गुंजाइश नहीं है, मजीद देर की गुंजाइश नहीं, फौरी तौर पर वो उसका हल चाहता है अपनी मर्जी के मुताबिक।
बस यहीं पे पंगा आ गया ना, ये जो है ना अपनी मर्जी का हल। हजूर कलंदर बाब औलिया ने एक बड़ी कीमती बात कही है कि खुश रहने का तरीका बताया उसने। क्या? कि जो दस्तयाब है उसको खुश होके इस्तेमाल करें और जो हासिल नहीं है उसके लिए कोशिश करें। देखिए कितना सिंपल सा जुमला है, जो चीजें दस्तयाब हैं उसको खुश होकर इस्तेमाल करें, यह है शुक्र। और जो हासिल नहीं है उसके लिए प्लान करें, उसके लिए कोशिश करें, उसके लिए काविश करें, उसके लिए जिद्दोजहद करें, यह है सबर। ये दो लफ्ज हैं कुरान के, सबर और शुक्र। हमने तर्जमा क्या कर दिया? मुंह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। और वो भी सबर के साथ, यानी लगातार जिद्दोजहद के साथ, इस्तकामत के साथ, पामर्दी के साथ, यानी आप लगे रहे। अब जहां पे ये इन्नल इंसाना अजूला, इन्नल इंसाना हलुअन, क्या कहा कि बेसब्रा, बेकरार, उजलत बाज, क्या मतलब हुआ? अब आपका ध्यान मसले के हल की तरफ नहीं है, आपका ध्यान नताइज पे है कि ये फौरन आ जाए। भाई फौरन कैसे आ जाए? फूल खिलने में वक्त लगेगा ना, बीज से फूल बनने का एक कुदरत ने प्रोसेस रखा हुआ है। अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो कौन तकलीफ में होगा? आप बीज का भी सत्यानाश करेंगे, अपना भी। आपकी तवक्को है ना। अब ये जो फकीरी में कहा जाता है, तवक्को मत रखो, तवक्को मत रखो, लेकिन उम्मीद तो रखनी है ना। उम्मीद ये है कि जी मैंने बीज बोया, अब ये पौधा उग रहा है, ठीक है, अपना टाइम पूरा करेगा, वो एक हफ्ता है, दस महीने हैं, जितना भी है, वो अपना टाइम पूरा करेगा, मौसम आएगा तब उस पे फूल आएंगे।
हाँ या नहीं?
अब गुजारिश ये है कि आपके पास मुझे कोई हल बता दीजिए। आपने अपने बात फरमा दी ना। अब फकीर क्या कहता है? फकीर ऐसे हालात में कहता है, अच्छा भाई या हय्यो या कय्यूम का विर्द करें। क्या कर रहा है वो? आपका ध्यान अल्लाह की सिफत हयात और उसके कयाम की तरफ मोड़ रहा है, ताकि आपके अंदर अल्लाह की सिफत हयात और सिफत कयाम मुतहर्रक हो जाए। जब ये सिफत हयात और कयाम मुतहर्रक होगी तो वसाइल आएंगे। वसाइल ही का रोना मचा हुआ सारा। अब हमारी सोच मकसद को हासिल करने के लिए जो वसाइल दरकार हैं उनका इंतजार कर रही है, बराह रास्त वसाइल के लिए कोशिश नहीं कर रहा। आप जरा सा हौसले से, इस उजलत बाजी से, ये हलवन की जो कैफियत है इससे निकलकर शांत होना सीखें पहली बार। नतीजे को अपनी मर्जी ना करें। देखें, कायनाती निजाम आप और मैं नहीं चला रहे, वो अल्लाह चला रहे। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आप अंदर से शांत हो जाएंगे, तो फिर मसाइल का हल सोचने के काबिल हो जाएंगे।
मगर सर, अल्लाह तो ये कहता है ना, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा।
बेशक बेशक,
अल्लाह से मांगना
है, अल्लाह ही से मांगना है, और खुद अपना हाथ पैर नहीं हिलाना। शाबाश। देखें, अल्लाह की बात को गलत मत समझे ना। जो काम आपके करने का है वो तो आप ही को करना है ना। अल्लाह ने खाना आपको मुहैया किया, खाना किसने? जी भाई, निवाला बना के उसे मुंह में किसने डालना है? वो भी अल्लाह मियां ने डालना है। अल्लाह रब्बे करीम ने एक निजाम के तहत हर चीज दस्तयाब की हुई है, लेकिन हमारी सोच का जाविया चुके उसके साथ टैली नहीं कर रहा, हम आहंग नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। व्हाट इज परेशानी? परेशानी का लघवी मतलब है बिखरना, यानी जहन बिखरा हुआ है। जहन के बिखरने से बचने की बात अर्ज की मैंने कि भी आप शांत हो जाएं तो जहन मसाइल का हल सोचेगा। ये सलाहियत किसकी दी हुई है? अल्लाह से करेंगे। बिल्कुल, जब आप अल्लाह से मांगेंगे और फिर अल्लाह के मुताबिक करने का काम खुद करेंगे तो नताइज किसने देने?
फूल अल्लाह ही फराम करेगा।
बिल्कुल, बस इतनी सी बारीक सी बात है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो अल्लाह सब खैर कर देगा। आपका शुक्रिया कि आपने ये दरियाफ्त किया, इस काबिल समझा मुझे, मैंने जो समझ में आया वो अर्ज़ किया। अल्लाह आपको खुश रखे जी, बहुत नवाजिश, अल्लाह ताला आपके ये मसाइल हल करे। मैं दुआगो हूँ, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बे करीम आपको ऐसी फहम अता फरमाए कि आप मसाइल को ख़ुद हल कर सकें। ज़ाहिर है कि आप अल्लाह ही की दीवी तौफीक से हल करेंगी। ये जो मांगना है वो असल में ये मांगना है कि बारे ला मुझे कोई हल सुझा दे, बारे ला तू बता मैं क्या करूँ। देखे ना, हम सुबह नमाज में क्या कहते हैं, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये मत करना, ये ना होने देना। मैं कहता हूँ ये क्यों नहीं पूछते हम कि या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, या आपकी तरफ से कहूँ तो मैं अल्लाह की बंदी हूँ। अब जब हम अल्लाह के बंदे हैं तो हमें अल्लाह से पूछ पूछ के चलना चाहिए या अपनी मर्जी उसको डिक्टेट करनी चाहिए। अहकामात बड़ी बात है, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि सुबह आप नमाज में जरा ये दुआ मांगे कि बारे ला मुझे तो पता नहीं है, मैं बड़ा कम फहम, तू फरमा के मुझे क्या करना चाहिए, तू मेरे दिल में डाल दे, तू मेरे अकल में डाल दे। ये मांगना किससे हुआ, ये चीज मांगने की अल्लाह। अब मैं कहूं कि अल्लाह मियां मुझे 10 रुपए दे दे, मुझे 100 रुपए दे दे तो ये बात गलत नहीं हो जाएगी। अल्लाह ये कहेंगे ये तो मैंने बनाया ही नहीं है, ये तो तुमने खुद बनाया। जी ठीक हो गया, जी वालेकुम सलाम।
सवाल आपसे ये पूछना चाह रही थी सर, ये है सूरह कौसर की आयतें, इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर। तो इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपको कौसर अता किया गया है, फिर उसके बाद फौरी कह रहे हैं कि आप नमाज पढ़ें और कुर्बानी, नमाज के साथ कुर्बानी कैसे आ रही है, ये मेरी समझ नहीं
आ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। इन्ना ताइना कल कौसर, कौसर के लफ्ज को देखें, लफ्ज कौसर के साथ हमने हौज लगा दिया। कुरान में हौज लगा हुआ है?
नहीं।
तो इसलिए पहले तो कौसर को आइडेंटिफाई करें। कौसर का मादा कसर है, काफ से रे, कसर से लफ्ज बनते हैं कसीर, कसर से लफ्ज खैरे कसीर, ठीक है, या कसरत। मेरी फहम ये कहती है कि अल्लाह रब्बे करीम फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें बेहतरीन नताएज अता कर दिए हैं, जिसमें कसर है। कसर का मतलब है कसरत, अल्हा के मुत्तकासर, ये उसी से है, तुम्हें तो कसरत ने मारा हुआ है। ठीक है
जी, अच्छा जी,
गौर करें, वही तकासुर का लफ्ज और यहाँ कौसर। एक तरफ अल्लाह मना कर रहा है कसरत से और एक तरफ कह रहा है मैंने तुम्हें अता किए, तो फर्क क्या है? हम जिस कसरत के चक्कर में पड़े हैं उसे अल्लाह ने तकासुर कहा, और जो कसरत अल्लाह अता कर रहा है यानी नताएज वो अल्लाह ने अता कर दिए। और क्या कहा, फसल्लिल रब्बे का, अपने रब के साथ राब्ते में आ जाओ, वन हर इशार करो, हमने तर्जुमा कर दिया कुर्बानी करो। अब लफ्ज कुर्बानी का तर्जुमा करें कुर्ब आनी, यानी करीब करने के लिए जो भी अमल करेंगे आप, करीब होने के लिए, वो कहला रहा कुर्बानी। यानी जब आप किसी के करीब होना चाहते हैं तो आप उसको कोई तोहफा देते हैं तो कुर्बानी ही तो दे रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहां पे लफ्ज कुर्बानी थोड़े इस्तेमाल हुआ है, यहां तो नहर इस्तेमाल हुआ है, वन हर। अब हमने चूंकि ऊंट को ज़िबा करने का खास टेक्निक है, उसके तहत उसको उसको नहर कहा गया, तो यहां से तर्जमा कर दिया कि कुर्बानी दो। अब गौर करें अल्लाह क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें बेहतरीन नताइज अता कर दिए, लिहाजा तुम अपने रब के साथ राब्ते में रहो और लोगों के लिए ईसार करो। इन निशाने का अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, यानी जो इसके खिलाफ चलेगा, इन निशाने का जो इसके खिलाफ चलेगा, हो वल अबतर, वो हो जाएगा बेनतीजा। अबतर कहते हैं जिसकी दुम कट जाए, यानी जिस चीज का सिरा आखिरी सिरा ही कट गया, नतीजा खत्म हो गया ना
जी।
अब क्लियर हो गई बात आपको, वाजे हो गई कि इन्ना अतैना कल कौसर, अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया मैंने तुझको बेहतरीन नताइज तेरे लिए अवेलेबल कर दिए, अता कर दिए मेरी तरफ से, माय टेबल इज क्लियर, नाउ इट इज अप टू यू हाउ टू गेट देम। तो उसका तरीका फार्मूला अल्लाह ने बता दिया, क्या फसल रब्बे का, अपने रब के साथ राब्ते में रहो, वन हर और इशार करो, इशार करो, इशार करो। इशार का क्या मतलब है, हम लोग अपने आप पे जुलम बर्दाश्त करके कहते हैं इशार कर रहा हूं, नहीं, इशार का मतलब ऐसा काम करना जिसका असर पैदा हो, जिसका कोई असर हो। और करें अल्लाह क्या कह रहे हैं, फसल रब्बे का पास, फे आ गया ना, फे का मतलब है पास, लिहाजा, लिहाजा को गौर करें जरा, आइना साइना कल कौसर फा, लिहाजा तुमको चाहिए स्वल्लिल रब्बे का, स्वल्लिल रब्बे का, अपने रब के साथ राब्ते में रहो, वन हर, और ऐसा काम करो कि जिसमें तुम पूरा जोर लगा दो ताकि उसका कोई असर बरामद हो, तो नताइज मिलेंगे। अगर इतना चाहने का अगर नहीं करोगे, हो अलग तर, तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, इशूलेस रहोगे। ये भी तो एक मफहूम बनता है ना, क्यों जी?
जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
खुश रहिए जी, अल्लाह खुश रखे आपको।
सर आपके अभी आपने जो बताया, मैं इसके बारे में सवाल करना चाहती हूँ सर, मुझे बहुत सालों से परेशान करता है
इरशाद,
और वो ये है कि सर देखें जो कुर्बानी है वो हज का रुकन है, तो मैंने कुरान जितनी अपनी कहन से पढ़ने की कोशिश की है, और हम लोग जो सर ये कुर्बानी सारी दुनिया में मुसलमान देते हैं।
जी जी, मनासक है ये, मनासक है हज, यानी के हज की रसम है,
रसम है जी,
जी, जी करना मनासक, यानी
कि मनासक के हज है। तो सर ये जो हम लोग कुर्बानी करते हैं, मुझे लगता है जैसे ये हम सोसाइटी सोशल कोई कंडीशनिंग है या पता नहीं, सही मुझे समझ नहीं आता।
आपने जो ये लफ्ज बोला है ना, सोशल कंडीशनिंग, आई विल एंडोर्स इट। जी
सर, आप उसकी जगह तो लोगों की हेल्प कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं। देखें अभी आपने क्या ये जो सूरह कौसर समाअत फरमाई, इसमें क्या अर्थ किया मैंने कि ऐसा काम करें जिसका कोई असर बरामद हो, इशार का तर्जुमा किया मैंने।
जी
अब बाकी देखें, एक चीज को हजूर अलैहिस्सलाम सबसे बड़े एंटी क्लैरिक थे। एंटी क्लैरिक का क्या मतलब है कि रस्म और रिवाज के उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए। हमने क्या किया कि उनकी जगह नए रस्म और रिवाज के मजीद बुत तराश लिए। तो आपने ये जो कंडीशनिंग का लफ्ज बोला है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा।
ठीक है, मैं समझ गया।
स्टे ब्लेस्ड। जी और कोई सवाल? जी वालेकुम अस्सलाम
सर।
इरशाद।
ये खानवादा को समझना चाह रहे थे, एक्सप्लेन करेंगे प्लीज सर।
खानवादा कहते हैं खानदान का रुकन।
जी,
लफ्ज खानवादा का लफ्जी मतलब है खानदान का रुकन। अब देखे ना, आपके खानदान में खानदान किसे कहते हैं? खाना दान यानी के घर के अफराद। हजूर मुर्शिद करीम से जब मैंने ये दरियाफ्त किया था कि जी ये खानवादा क्या होता है, तो अब्बा ने कहा कि आप कहीं जाके रहते हैं, बसते हैं, आप शादी करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, एक परिवार बन जाता। आप किसी को अपने खानदान का एक रुकन मुकरर कर लेते हैं, यानी बाहर से किसी बंदे को जो आपके जहन आपके मिजाज के मुताबिकत रखता है, ठीक है, उसको कहते हैं भाई आप भी मेरे घर के मेंबर की तरह हैं। कहते हैं ना कई दोस्तों को हम।
जी
तो मखबल कोर वाला शान है, कहते हैं या नहीं पश्तों में? तुम भी मेरे घर वालों की तरह, यानी किसी को हम बहुत इज्जत दें तो क्या कहते हैं, तुम मेरे घर वालों जैसे हो।
जी
पश्तो में कहते हैं ना, बहुत सारे जुमले हैं कि देखो जमंग अखपल कोर सड़े। आओ ठीक है, हालांकि वो रिश्ते में नहीं होता। अब जब एक सिलसिला बनता है रूहानी सिलसिला, तो इमाम सिलसिला जिसको चाहता है उसको अपने घर का अपने उस परिवार का रुकन डिक्लेयर कर देता है। अब्बा ने बताया था कि खानवादा इमाम सिलसिला बनाता है और आगे खानवादा अपने नायब बनाता है। वो किसी को खानवादा नहीं बना सकता, खानवादा इमाम सिलसिला बनाता है। हजूर कलंदर बाबा औलिया 11 सलासल के खानवादा हैं। क्या मतलब हुआ कि 11 रूहानी घरानों ने उनको अपना घर का बंदा डिक्लेयर कर दिया। यानी देखें उनका जहन कितना बड़ा था कि 11 खानदानों ने उनको अपना बंदा डिक्लेयर कर दिया। यानी उन सलासल के इमामीन ने, वो जो उन सलासल इमाम सिलसिला जब किसी को अपने घर का बंदा कहेगा तभी वो खानवादा कहलाएगा ना।
जी सर।
तो खानवादा का मतलब है कि जो इमाम सिलसिला की तर्ज फिक्र का हामिल होगा। अब इसका ये असल मतलब समझ लें, खानवादा वो होगा जो इमाम सिलसिला का ममस्सल होगा, उस जैसा होगा। कोई घर में किसी को कह सके ठीक हो गया ना? देखे ना, अब आप घर में किसी से काम लेने के लिए एक नौकरानी को घर में दाखिल करते हैं, आप उसको घर का फर्द नहीं मानते। उसको कितना ही क्लोज हो जाए वो, वो रहती नौकरानी ही है, हाँ या नहीं?
जी सर,
बात समझ आ गई ना कि खानवादगी जो है ये इमाम सिलसिला के जहन के साथ हम आहंग होने का नाम है।
शर्फ हो गया। जी जी जी,
बहुत आला दर्जे का शर्फ है। हजूर कलंदर बाब औलिया 11 सलासल के खानवादा हैं और 21 सलासल के मुरब्बी और मुशफी हैं। क्या मतलब हुआ? मुरब्बी कहते हैं तरबियत देने वाला, यानी 21 सलासल के बड़ों ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारे बच्चों की तरबियत को भी लुक आफ्टर किया करें। आपको अंदाजा हुआ कि हजूर कलंदर बाब औलिया का रुतबा और मुकाम क्या है रूहानी दुनिया में?
जी।
और फिर उनका खानवादा होना
जी।
अंदाजा हुआ कि मुर्शिदे करीम को क्या शर्फ हासिल है
जी।
और ये हमारी कितनी बड़ी सआदत है कि हम उनसे मुतालिक हो गए, उनकी निस्बत हासिल हो गई हमें। उन्होंने हमें जब अपने नाम के आगे अजीमी लिखने की इजाजत मरहमत फरमाई तो गोया हमें कितने बड़े एजाज से नवाजा गया, और हम उस एजाज के साथ क्या कर रहे हैं? क्या उसकी शरायत पूरी कर रहे हैं?
बहुत बड़ी।
ठीक हो गया जी?
बहुत शुक्रिया।
आपका शुक्रिया जी, अल्लाह खुश रखे। मेरा ख्याल है काफी हो गया। यह है कोई सवाल और?
सर एक सवाल छोटा सा।
जी जी, इरशाद इरशाद।
सर इंसान और आदमी में बुनियादी फर्क क्या है, इंसान होने में और आदमी?
मैं इस तरह तीन जुमलों में आपको समझा देता हूँ। आदमी का मतलब है हैवानी सता, इंसान का मतलब है इंसानी सता, और आदम का मतलब है कि अल्लाह का नायब होना। ये तीन दर्जे ज़हन में रख लें। आदमियत से मुराद ये है कि आप वो सारे काम कर रहे हैं जो हैवान करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, लड़ते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, घर बनाते हैं, बच्चों की तरबियत करते हैं, ये सारे काम हैवानी सतह के हैं, ये आदमियत के दायरे में आएंगे।
सही।
लड़ना झगड़ना वगैरह सब इसी में आ गया।
सही।
अब इंसानी सतह पे हम वो काम करते हैं जो जानवर नहीं कर सकते। अब जानवर क्या नहीं कर सकते? जानवर ईजाद नहीं कर सकते, इख्तरा नहीं कर सकते, आलात नहीं बना सकते, औजार नहीं बना सकते, और हथियार तो बिल्कुल भी नहीं बनाते। ठीक हो गया ना? ये जहन के कारनामे। अब आपने लोहे को इस्तेमाल किया, लकड़ी का दस्ता लगा के उसका खुरपा बनाया, या दरांती बनाई, या कई बनाई, या कसी बनाई, या खुदाल बनाई, ये जानवर नहीं कर सकते। तो ये इजादात और इख्तरात के लिए क्या किया? आपने जहन का इस्तेमाल किया। यानी जब आप जहन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आदमियत से ऊपर उठ गए, अब आप इंसानियत के दर्जे में दाखिल हो गए। अब उसमें आप तरक्की कितनी करते हैं, ये दुनिया में साइंसदान सारे के सारे क्या कहेंगे हम? ये इंसानी दर्जे पर काम कर रहे हैं। अब इससे ऊपर है रूहानी दर्जा।
रूहानी दर्जा सही।
वो क्या है कि वो काम जो इंसान भी नहीं कर सकते। अब इंसान क्या नहीं कर सकता? इंसान वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकता। इंसान, मैंने आदमी नहीं बोला, इंसान वसाइल के बगैर काम नहीं कर सकता। खुरपा बनाना है तो आपको लोहा भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए। अब इसकी एक मिसाल सुन लें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हजरत ईसा का वाक्या देखें, वो गंजे के सर पे हाथ फेरते थे, बाल उगाते थे, नाबीना की आंखों पे हाथ फेरते थे, वो बीना हो जाता था। तो ये कौन सा दर्जा हुआ? वसाइल के बगैर, वो कोई दवाई नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो कोई नुस्खा नहीं लिख के दे रहे, वो براہ راست اللہ کی صفت رحیمی کا استعمال کر رہے ہیں.
استعمال کر رہے ہیں صحیح.
واضح ہو گئی بات؟
جی سر.
کہ آدمی کیا ہے؟ حیوانی سطح. انسان کیا ہے؟ ذہنی سطح. آدم کیا ہے؟ روحانی سطح.
روحانی
سطح. ابھی تو ہم آدمیت سے پیچھا نہیں چھوٹ رہا ہمارا, تو اوپر آدم کیسے بنیں گے؟ وہ آدم کی شکل و صورت رکھنے کی وجہ سے اسے آدمی کہا جا رہا ہے, لیکن ہے وہ حیوانی سطح پہ. انسان کا لفظ قرآن نے استعمال کیا, اور انسان کا مادہ ہے نسی, نسی خلقہ سورہ یاسین میں صاف کہا کہ یہ بھولا ہوا ہے کس کو؟ اپنی روحانی صلاحیتوں کو, اور دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے جس جہاں اس نے رہنا بھی نہیں ہے, جہاں رہنا ہے اسی کو بھولا ہوا ہے, جس نے بھیجا ہے اسی کو بھولا ہوا ہے, جس کے پاس جانا ہے اسی کو بھولا ہوا ہے, حالانکہ دیکھ کر آیا ہے. مرشد کریم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ بھئی یہ سب تمہارا دیکھا بھالا ہے, تم اسے صرف یاد کر لو, اس بھول والی چکر سے نکل جاؤ گے. ٹھیک ہو گیا جی؟
جی سر, تھینک یو سر.
مائی پلیزر جی, بہت شکریہ. کافی ہو گیا میرا خیال ہے جی. وعلیکم السلام.
میرا ایک کوشچن ہے.
ارشاد
سر, کی آیت ہے وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء.
جی جی پانی لفظ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں, بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے ماں کا ترجمہ حضور قلندر باب اولیا نے کیا کیا, حضور قلندر باب اولیا نے فرمایا کہ تصورات کا خول, یعنی کہ اللہ رب کریم نے ستت ایام یعنی چھ بناوٹوں میں کائنات کو تخلیق کیا, اور اپنا کنٹرول تصورات پہ قائم کیا. میرا خیال ہے بات تو واضح ہو گئی. یعنی دیکھیں نا, لفظ ماں کو پانی نہ سمجھیں, اس کو مجازن کنایاتن اشارتن آپ ذرا اس کو تصورات سے ریلیٹ کریں. پانی کیا کرتا ہے؟ وہ جس چیز میں جاتا ہے اس جیسا بن جاتا ہے. بیج میں جاتا ہے, گلاب میں جائے گا تو گلاب کے بیج کی پراپرٹیز کے اندر گھس کے اس کو گلاب بنا دے گا, ہاں یا نہیں؟
جی جی.
تو پانی کیا ہوا؟ پانی کیا ہوا؟
تصورات ہوئے نا.
تو تصورات پہ ہی اللہ نے کہا کہ میرا کنٹرول ہے. عرش کا مطلب کنٹرول روم.
جیسا آپ تصور کو ڈیولپ کرتے جائیں گے اس کے مطابق چیزیں ہوں گی.
ظاہر ہے اللہ رب کریم کیا کر رہے ہیں, کنٹرول. ثم استوى على العرش, پھر وہ قائم ہوا یعنی اس نے کنٹرول سنبھال لیا, یعنی ساری کائنات بنائی پھر کنٹرول سنبھالا, اور پھر کہا کہ یہ میرا کنٹرول جو ہے یہ ماں پہ ہے. ہم نے ماں کا ترجمہ پانی کر دیا اور بس مچھی کی طرح بس پھڑک رہے.
جی جی. کانا جو ہے, کانا کن سے ہے.
کن سے جی, میں نے کر دیا کانا, میں نے کر دیا. ہمارے ہاں تو کانا اسے کہتے ہیں نا جس کی بےچارے کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے. کن سے, بالکل آپ نے درست فرمایا.
اور سر یہ سماوات,
शऊर के दर्जे, शऊर के दर्जे, वो स्क्रीन है, कोई भी मतलब गुलाब, ये मक्खी एक स्क्रीन है, मच्छर एक स्क्रीन है, ये पेड़ नजर आ रहा है, आम का पेड़ है तो ये आम के दरख्त की पूरी एक स्क्रीन है, अल्लाह की स्क्रीन सिक्स डायमेंशनल है, हमारी और आपकी बनाई हुई स्क्रीन टू डायमेंशनल है।
जी।
बहुत हो तो उसमें मोटाई दिख जाती है, तो हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल हो गई।
बना ली गई है
ये जो सित्ता से अयाम है, ये सिक्स डायमेंशन की तरफ इशारा है ना। अब ये सिक्स डायमेंशन क्या है? आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे।
सर मैं इसी से एक चीज रिलेट करना चाह रही हूँ,
इरशाद
कि तो आपने वजाहत फरमा दी के अर्श का क्या मतलब है ना, कंट्रोल है।
जी जी।
तो सर एक एक रिवायत में ही मैंने पढ़ा था कि अल्लाह का अर्श भी पानी पर है, इब्लीस का अर्श भी पानी पर है, और मलका सबा का जो तख्त अर्श था वो भी पानी पर था। तो उस चीज ने थोड़ा सा मुझे
बस आप इस पढ़े हुए को छोड़ दें और अल्लाह ने जो कहा है बराह रास्त उस पर तफक्कुर करें।
कुरान में मुझे ये दोनों चीजें
नहीं मिली तो जी तो बाज आ जाए ना। जब कुरान में नहीं मिली तो इसका क्या मतलब हुआ?
नहीं।
ये बनी हुई बात है, किसी इंसान ने अपनी रॉ में कोई बात कही है, अल्लाह उसे खुश रखे, उन्होंने पता नहीं किस जाविये से बात कही। जी
सर बहुत शुक्रिया, आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से,
अल्लाह खुश रखे आपको जी, आपका शुक्रिया कि आप मुझे ये एजाज देते हैं मुझसे सवाल।
क्योंकि किसी के जहन में कोई सवाल होता है रिलेटेड, या जैसा हम पढ़ते हैं बहुत कुछ, तो अल्लाह का शुक्र है आपने इतनी चीजों का एक्सप्लेन किया है कि वो क्लियर हो जाती है कि हाँ ये रिलेट कर रही है या नहीं कर रही।
अल्लाह आपको खुश रखे जी, बहुत नवाजे,
क्लियरिटी हो जाती है।
आप अपना सब बहुत ख्याल रखें, ठीक हो गया? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत शुक्रिया सर।